चैतन्य चरिता अमृत अंत्य लीला अध्याय 17 श्री चैतन्य महाप्रभु के शारीरिक विकार। मैं भगवान गौर चंद्र की दिव्य लीलाओं तथा आध्यात्मिक उन्माद के विषय में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि अत्यंत अद्भुत तथा असामान्य है। मैं उनके विषय में लिखने का साहस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उनके मुखों से सुना है, जिन्होंने महाप्रभु के कार्यों को स्वयं देखा है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत चंद्र की जय हो। महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। भावमग्न श्री चैतन्य महाप्रभु दिन रात उन्मत्त की तरह कार्य करते और बोलते रहते। एक बार स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय के संग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण लीलाओं के विषय में बातें करते करते आधी रात बिता दी। जब वे कृष्ण के विषय में बातें करते तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य भावों के अनुरूप गीत गाया करते। रामानंद राय विद्यापति तथा चंडी दास की पुस्तकों से और विशेष रूप से जयदेव गोस्वामी कृत गीत गोविंद से श्लोक उद्धृत करते, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के भावों को बढ़ावा देते। बीच बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु भी कोई श्लोक पढ़ देते, तब वे शोक करते हुए इसकी व्याख्या करते। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाना प्रकार के भावों का अनुभव करते करते आधी रात बिता दी। अंत में महाप्रभु को उनके बिस्तर पर लिटा कर स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय दोनों अपने अपने घर चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु का निजी सेवक गोविंद उनके कमरे के दरवाजे पर लेट गया और महाप्रभु रात भर उच्च स्वर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहे। सहसा श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, अतः बाबा वेश में वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए चल पड़े। तीनों दरवाजे हमेशा की तरह बंद कर दिए गए थे, किंतु फिर भी अति बाबा वेश में श्री चैतन्य महाप्रभु कमरे के बाहर निकल आए और घर को छोड़ दिया। वे सिंह द्वार की दक्षिण ओर की गौशाला में गए और तैलंग जिले की गायों के बीच अचेत होकर गिर पड़े। इस बीच श्री चैतन्य महाप्रभु का कोई शब्द न सुनकर गोविंद ने तुरंत स्वरूप दामोदर को बुलाया और दरवाजे खोले। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने दीपक जलाया और वे श्री चैतन्य महाप्रभु को खोजने के लिए सारे भक्तों समेत बाहर चले गए। इधर उधर ढूंढने के बाद अंत में वे सब सिंह द्वार के निकट गौशाला में पहुंचे। वहां उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को गायों के बीच अचेत लेटे हुए पाया। उनके हाथ तथा पांव उनके पेट के भीतर प्रवेश कर गए थे, मानो कछुए के अंग हो। उनके मुख से जाग निकल रहा था। उनके शरीर भर में फुंसियां निकल आई थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब महाप्रभु वहां अचेत पड़े थे, तब उनका शरीर एक बड़े कुम्हाड़े जैसा लग रहा था। बाहर से वे पूर्णतया जड़ थे, किंतु भीतर ही भीतर वे अपार दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। महाप्रभु के चारों ओर सारी गौवें उनके दिव्य शरीर को सूंघ रही थी। जब भक्तों ने उन्हें रोकना चाहा, तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर का संग त्याग करना नहीं चाहा। भक्तों ने नाना प्रकार से महाप्रभु को उठाना चाहा, किंतु उनकी चेतना लौट नहीं आई, इसलिए उन सबों ने उन्हें उठा लिया और घर लौटा ले आए। सारे भक्त महाप्रभु के कान में उच्च स्वर से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने लगे, तो काफी देर बाद श्री चैतन्य महाप्रभु को फिर से चेतना प्राप्त हुई। जब उन्हें चेतना आई, तब उनके हाथ पांव उनके शरीर से बाहर निकल आए और उनका सारा शरीर पूर्ववत हो गया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु उठ खड़े हुए और फिर से बैठ गए। इधर उधर देखकर उन्होंने स्वरूप दामोदर से पूछा, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? वंशी की ध्वनि सुनकर मैं वृंदावन चला गया और वहां पर मैंने देखा कि महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण गोचूर्ण भूमि में अपनी वंशी बजा रहे हैं। अपनी वंशी की ध्वनि के संकेत से वे श्रीमती राधा रानी को एक कुंज में ले आए। फिर वे उनके साथ लीला करने के लिए कुंज के भीतर चले गए। मेरे कान उनके आभूषणों की ध्वनि से मुग्ध हो गए और मैंने कृष्ण के पीछे पीछे कुंज में प्रवेश किया। मैंने देखा कि कृष्ण तथा गोपियां हास परिहास करते हुए सभी प्रकार की क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। उनकी कंठ ध्वनि सुनकर मेरे कानों का उल्लास बढ़ गया। तभी तुम सब कोलाहल करते हुए मुझे बल पूर्वक यहाँ ले आए। क्योंकि तुम लोग मुझे यहाँ लौटा ले आए, इसलिए मैं न तो कृष्ण एवं गोपियों की अमृतमयी वाणी सुन पाया, न ही मैं उनके आभूषणों या मुरली की ध्वनि सुन सका। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत भावावेश में स्वरूप दामोदर से अवरुद्ध वाणी में कहा, मेरे कान तृष्णा के कारण मर रहे हैं, कृपा करके इस तृष्णा को बुझाने के लिए कुछ सुनाओ और मुझे सुनने दो। श्री चैतन्य महाप्रभु के उर्मी पूर्ण भाव को जानकर स्वरूप दामोदर ने मधुर स्वर में श्रीमद् भागवत से निम्नलिखित श्लोक सुनाया। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, तीनों लोकों में ऐसी कौन स्त्री है जो आपकी अद्भुत वंशी से निकले मधुर गीतों की लय से मोहित न हो जाए? इस तरह ऐसी कौन होगी जो सतीत्व के मार्ग से च्युत नहीं हो जाएगी? आपका सौंदर्य तीनों लोकों में अत्यंत उत्कृष्ट है। आपकी सुंदरता को देखकर गौवें, पक्षी, पशु तथा जंगल के वृक्ष भी हर्ष से स्तंभित हो जाते हैं। यह श्लोक सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव से अभिभूत हो गए और उसकी व्याख्या करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गोपियां भावावेश में रास नृत्य की स्थली में प्रविष्ट हुई, किंतु कृष्ण से उपेक्षा तथा उदासीनता के शब्द सुनकर वे समझ गई कि कृष्ण उनका परित्याग करने वाले हैं, इसलिए वे उन्हें क्रोध में उलाहना देने लगी। उन्होंने कहा, हे प्रियतम, जरा हमारे एक प्रश्न का उत्तर तो दो। इस ब्रह्मांड में कौन ऐसी तरुणी है जो आपकी वंशी की ध्वनि से आकृष्ट नहीं होती? जब आप अपनी वंशी बजाते हो तब यह ध्वनि मंत्रोच्चारण कला में पटु योगिनी के जैसी दूती का सा कार्य करती है। यह दूती ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों को विमोहित करती है और उन्हें आपकी ओर आकृष्ट करती है। तब वह उनकी उत्कंठा को बढ़ाकर अपने से बड़ों की आज्ञा मानने के विधान का परित्याग करवाती है। अंत में वह उन्हें बलपूर्वक आपके पास माधुर्य प्रेम में आत्मसमर्पण कराने लाती है। आपकी वंशी की ध्वनि हमें काम के बाणों से बलात् भेदने वाली आपकी चितवन के साथ मिलकर हमें धार्मिक जीवन के विधि विधानों की उपेक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह हम कामेच्छाओं से उत्तेजित होकर सारी लज्जा तथा भय त्याग कर आपके पास आती है, किंतु अब आप हमसे रूठे हुए हो। आप हमारे द्वारा धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन किए जाने से तथा अपने अपने घरों तथा पतियों को छोड़ने पर हम में दोष निकाल रहे हो। जब आप हमें धार्मिक सिद्धांतों का उपदेश देते हो तो हम निरुपाय हो जाती हैं। हम जानती हैं कि यह आपकी सुनियोजित चाल है। आपको ऐसा परिहास करना आता है जिससे स्त्रियों का सर्वनाश हो जाता है, किंतु हम समझ सकती हैं कि आपके वास्तविक मन वचन तथा व्यवहार सर्वथा भिन्न है। इसलिए आप कृपया इन चातुर्यपूर्ण चालों को छोड़ दो। आपकी वंशी की ध्वनि की अमृतमय छाछ, आपके मधुर शब्दों का अमृत तथा आपके आभूषणों की अमृत तुल्य ध्वनि, ये तीनों हमारे कानों मनों तथा प्राणों को आकृष्ट करने के लिए मिल जाते हैं। इस तरह आप हमें मार डाल रहे हो। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम की तरंगों में तैर रहे थे, अतः उन्होंने ये शब्द रोष की मुद्रा में कहे। उत्कंठा के सागर में डूबकर उन्होंने उसी भाव को व्यक्त करने वाला श्रीमती राधा रानी द्वारा कहा हुआ श्लोक सुनाया। तब उन्होंने स्वयं इस श्लोक की व्याख्या की और कृष्ण की मधुरता का आस्वादन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे सखी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की वाणी आकाश में गर्जन करने वाले बादल के समान गंभीर है। वे अपने आभूषणों की रुंझुन से गोपियों के कानों को और अपनी वंशी की ध्वनि से लक्ष्मी देवी तक को तथा अन्य सुंदरियों को आकृष्ट करते हैं। मदन मोहन नाम से विख्यात वे भगवान जिनके परिहास के वचन अनेक संकेत तथा गंभीर अर्थ रखते हैं, मेरे कानों की कामेच्छाओं को वर्धित कर रहे हैं। कृष्ण की गंभीर वाणी नवीन उमड़े बादलों से भी अधिक गर्जन करने वाली है और उनका मधुर गीत कोयल की मधुर वाणी को भी पराजित करने वाला है। निसंदेह उनका गीत इतना मधुर है कि उसकी ध्वनि का एक कण भी सारे जगत को आप्लावित कर सकता है। यदि ऐसा कण किसी के कान में प्रवेश करता है तो वह तुरंत ही समस्त अन्य प्रकार के श्रवण से विहीन हो जाता है। हे सखी, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? मेरे कानों को कृष्ण की ध्वनि के गुणों ने लूट लिया है, किंतु अब मैं यह दिव्य ध्वनि नहीं सुन पा रही और मैं उसके बिना मृत प्राय हूँ। कृष्ण के नुपुरों की ध्वनि हंस तथा सारस के गीतों का भी अतिक्रमण कर जाती है और उनके कंगनों की ध्वनि चटक पक्षी के गाने को भी लज्जा देती है। यदि एक बार भी इन ध्वनियों को कानों में प्रविष्ट होने दिया जाए तो फिर अन्य कुछ भी सुनना सहन नहीं हो सकता। कृष्ण की वाणी अमृत से भी कहीं अधिक मीठी होती है। उनका प्रत्येक हर्षित शब्द अर्थपूर्ण होता है और जब उनकी वाणी उनकी कपूर जैसी हंसी से मिल जाती है तो इस तरह से कृष्ण के शब्दों से उत्पन्न ध्वनि तथा उसका गंभीर अर्थ विविध दिव्य रसों को उत्पन्न करते हैं। उस दिव्य आनंदमय अमृत का एक कण कान का प्राण है जो चकोर पक्षी की तरह उस अमृत का आस्वादन करने की आशा में जीवित रहता है। भाग्यवश यह पक्षी कभी तो उसका आस्वादन कर सकता है किंतु कभी कभी दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए वह तृष्णा से मरणासन हो जाता है। कृष्ण की वंशी की दिव्य ध्वनि विश्व भर की स्त्रियों के हृदयों को विचलित करती है, चाहे वे उसे एक बार ही क्यों न सुने। इस तरह उनके कमर बंद ढीले पड़ जाते हैं और ये स्त्रियां कृष्ण की निशुल्क दासियां बन जाती हैं। निसंदेह वे बावली स्त्रियों की तरह कृष्ण की ओर दौड़ती हैं। कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनकर लक्ष्मी जी भी उनकी संगति की बहुत बड़ी आशा बांध कर उनके पास आती हैं, किंतु तो भी उन्हें वह संगति नहीं मिल पाती। जब उनकी संगति की तृष्णा की लहरें बढ़ती हैं, तो लक्ष्मी जी तपस्या करती हैं, किंतु तो भी वे उनको नहीं मिल पाती। जो अत्यंत भाग्यवान है वही इन अमृत तुल्य चार प्रकार के शब्दों को सुन सकता है। कृष्ण के शब्द, उनकी नुपुरों तथा कंगनों की रुंझुन, उनकी वाणी तथा उनकी वंशी की ध्वनि, यदि वह इन ध्वनियों को नहीं सुन सकता तो उसके कान छोटे शंख के छेद के समान व्यर्थ हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह विलाप कर रहे थे तो उनके मन में उद्वेग तथा भाव का उदय हुआ जिससे वे अति चंचल हो उठे। उनमें अनेक दिव्य भावों का मिश्रण हो रहा था, यथा उद्वेग, विषाद, मति, उत्सुकता, त्रास, धृति तथा स्मृति इत्यादि। इन भावों के समन्वय से बिल्व मंगल ठाकुर लीला शुक के मन में श्रीमती राधा रानी के एक कथन का उदय हुआ। अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसी भाव से उस श्लोक को सुनाया और उन्माद के बल पर उन्होंने उसका अर्थ बतलाया जो सामान्य लोगों को ज्ञात नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाय मैं क्या करूं, मैं किससे कहूं, मैंने कृष्ण से मिलने की आशा में जो कुछ किया है उसे अब समाप्त हो जाने दो, कृपया अब कोई शुभ बात कहो किंतु कृष्ण के विषय में मत कहो। हाय कृष्ण तो मेरे हृदय में कामदेव की तरह पड़े हुए हैं, तो फिर मैं उनके विषय में बातें करना कैसे बंद कर दूं? मैं कृष्ण को भूल नहीं सकती, जिनकी हंसी स्वयं मधुरता से भी अधिक मधुर है और जो मेरे मन तथा आंखों को आनंद देने वाले हैं। हाय कृष्ण के लिए मेरी अगाध तृष्णा प्रति क्षण बढ़ती जा रही है। कृष्ण के विरह से उत्पन्न चिंता ने मुझे अधीर बना दिया है और मैं उनसे मिलने का कोई उपाय नहीं सोच पा रही। हे सखियो तुम भी विषाद से बावली हो रही हो, अब मुझे कौन बताएगा कि उन्हें कैसे खोजा जाए? हे प्रिय सखियों मैं कृष्ण को कैसे पा सकूंगी, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं उनसे कहां मिल सकती हूं? कृष्ण के न मिलने से मेरे प्राण निकल रहे हैं। एकाएक श्री चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए और अपनी मनोदशा पर विचार करने लगे। उन्हें पिंगला के शब्द स्मरण हो आए और इससे उनके मन में बाबा वेश का उदय हुआ, जिसने उन्हें बोलने के लिए प्रेरित किया। इस तरह वे इस श्लोक का अर्थ बतलाने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि मैं कृष्ण से मिलने की आशा त्याग दूं, तो मैं सुखी रहूंगा, इसलिए हम कृष्ण विषय इस अति महिमाहीन चर्चा को बंद करें। अच्छा हो कि हम महिमा मंडित कथाओं के विषय में बातें करें और कृष्ण को भूल जाएं। इस तरह बोलते हुए श्रीमती राधा रानी को सहसा कृष्ण का स्मरण हो आया। निसंदेह वे उनके हृदय के भीतर प्रकट हुए। अत्यंत चकित होकर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, मैं जिस पुरुष को भूलना चाहती हूँ वह तो मेरे हृदय में स्थित है। श्रीमती राधा रानी के भाव ने उन्हें यह सोचने के लिए भी बाध्य किया कि कृष्ण कामदेव हैं और इस ज्ञान से वे भयभीत हो उठी। उन्होंने कहा, यह कामदेव जिसने सारे जगत को जीत कर मेरे हृदय में प्रवेश किया है मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वह मुझे उन्हें भूलने की अनुमति नहीं देता। तब महान उत्सुकता ने भाव के अन्य सारे सैनिकों को जीत लिया और श्रीमती राधा रानी के मनोराज्य में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई जो वश में नहीं आ रही थी। तब अत्यंत दुखी होकर उन्होंने अपने ही मन की भर्त्सना की, यदि मैं कृष्ण के विषय में न सोचूं तो मेरा दीन मन क्षण भर में मर जाएगा, जिस तरह जल के बाहर आने पर मछली मर जाती है। किंतु जब मैं कृष्ण के मधुर हास्य युक्त मुख को देखती हूँ तो मेरा मन तथा मेरी आंखें इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि उनके देखने के लिए मेरी इच्छा पुनः द्विगुणित हो जाती है। हाय मेरे जीवन की नीति कृष्ण कहाँ है, वे कमल नेत्र कहाँ है? हाय वे समस्त दिव्य गुणों के दिव्य सागर कहाँ है? हाय वे सुंदर सांवले रंग वाले और पीतांबर धारण किए हुए युवक कहाँ हैं? हाय रास नृत्य के नायक कहाँ हैं? मैं कहाँ जाऊं? मैं आपको कहाँ पा सकता हूँ? कृपया मुझे बताओ, मैं वहीं जाऊंगा। इस तरह कहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु दौड़ने लगे, किंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने खड़े होकर उन्हें पकड़ लिया और अपनी गोद में उठा लिया। तब स्वरूप दामोदर उन्हें उनके स्थान पर लौटा ले आए और उन्हें बैठा दिया। सहसा श्री चैतन्य महाप्रभु की बाह्य चेतना जागृत हुई और उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा, हे प्रिय स्वरूप, कोई मधुर गीत गाओ। जब महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को गीत गोविंद के तथा विद्यापति रचित गीत गाते सुना तो उनके कर्ण तृप्त हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी तरह प्रत्येक रात और दिन उन्मत्त हो उठते और एक पागल की तरह बातें करते। श्री चैतन्य महाप्रभु को एक दिन में जितने भाव विकारों का अनुभव होता उसका पूरा पूरा वर्णन हजार मुखों वाले अनंत देव भी नहीं कर सकते। मुझ जैसा दीन प्राणी उन विकारों का वर्णन कैसे कर सकता है? मैं तो केवल उनका संकेत कर सकता हूँ, जिस तरह वृक्ष की शाखाओं के बीच से चंद्रमा को दिखलाया जा रहा हो। किंतु यह वर्णन उस व्यक्ति के मन तथा कानों को तुष्ट करेगा। जो इसे सुनेगा वह कृष्ण के गहन प्रेम के इन असामान्य कार्यकलापों को समझ सकेगा। कृष्ण के लिए प्रेमावेश अद्भुत तथा निगुण है। उस प्रेम के महिमामय माधुर्य का स्वयं आस्वादन करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इसकी चरम सीमा दिखलाई है। श्री चैतन्य महाप्रभु अद्भुत कृपालु एवं अद्भुत वधान्य है। हमने इस जगत में उन जैसे दयालु तथा दानी अन्य किसी के बारे में नहीं सुना है। हे संसार के लोगों, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की सभी प्रकार से पूजा करो। केवल इसी विधि से तुम उन्मत्त कृष्ण प्रेम के अमृतमय कोष को प्राप्त कर सकोगे। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के कुर्म जैसे बनने के विकार का वर्णन किया है। उस भाव में वे उन्मत्त की तरह बातें और कार्य करते थे। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी पुस्तक गौरांग तव कल्प वृक्ष में इस लीला का बड़ी भांति वर्णन किया है। कितनी विचित्र बात है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने तीन सुदृढ़ता पूर्वक बंद किए हुए दरवाजों को बिना खोले ही अपना घर छोड़ दिया। तब उन्होंने तीन ऊंची दीवारें लांगी और बाद में वे कृष्ण विरह की प्रबल अनुभूति के कारण तैलंग जिले की गौवों के बीच में गिर गए और अपने शरीर के सारे अंगों को कछुए की तरह भीतर समेट लिया। इस तरह प्रकट होने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में उदित होकर मुझे उन्मत्त बनाते हैं। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए तथा उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरिता अमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरिता अमृत के अंत्य लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु के शारीरिक विकार शीर्षक 17वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।